ओम शांति। जब भी हम मधुबन में आते हैं तो मधुबन में आने का क्या लक्ष्य होता है, किस लक्ष्य को रखकर यहां पर सब आते हैं? एक तो बाबा से मिलने और कुछ नवीनता लाने के लिए, और वरदानों से झोली भरने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, और सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, स्व उन्नति के लिए। तो इस तपस्वी भूमि में आने का हमारा लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है। चाहे बाप से मिलना हो, बाप से मिलना अर्थात आज की मुरली से बाप समान बनना, बहुत बड़ी परिभाषा दी है बाबा ने, बाप से मिलना अर्थात बाप समान बनना। तो जब हम इस तपस्या भूमि पर आ रहे हैं तो हमारा सर्वप्रथम जो लक्ष्य है वो है तपस्या करना। तपस्या एक बहुत ही ऊंचा शब्द है, तपश्चर्या ये भी एक शब्द है। तो तपस्या क्या है? इस जीवन का जो लक्ष्य है वो है संपूर्ण पद को प्राप्त करना, सर्वगुण संपन्न, सतयुग में नहीं अभी इसी संगम युग की जो संपूर्णता है उसको प्राप्त करना। तो यहां आने का एक सबसे मुख्य लक्ष्य जो है वो है तपस्या करना। तपस्या अर्थात एक आनंदमयी स्थिति है तपस्या। तपस्या अर्थात शरीर कष्ट नहीं, तपस्या अर्थात शरीर दमन नहीं, नॉट सपरेशन बट सब्लिमेशन। तपस्या अर्थात वह टेक्निक जिससे यह बोध हो जाए कि मैं देह नहीं और एक दिव्य आत्मा हूं। आत्मा का और देह का पृथकता, भिन्नता की अनुभूति, यह है तपस्या। यह संपूर्ण जान लेना कि मैं जो हूं वो एक दिव्य चेतन आत्मा हूं, और जो देह है इस देह से उपराम हूं, इस देह से परे हूं। यह दिव्य अनुभूति हो जाना ही तपस्या है, और तपस्या सदा और बहुत काल की चाहिए। बाबा ने ये दो शब्द हमेशा कहे हैं, सदा की और बहुत काल की तपस्या। ऐसी तपस्वी जो स्थिति है वो आनंदमय स्थिति है। ये जो अवस्था है ये एक ऐसी अवस्था है कि इस अवस्था में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। वह सुख का अनुभव होता है कि जो इस भौतिक संसार में नहीं है, उस सुख का अनुभव होता है कि जो यहाँ के संबंध है संसार के, उन संबंधों से भी परे, संसार के जो भी साधन है उन सभी से परे वह जो दिव्य आनंद है वो सोल कॉन्शियस स्टेट में है। तो यह जो सोल कॉन्शियस स्टेट है इसका अधिक से अधिक अनुभव करना, इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना, इसका नाम है तपस्या। तो हम सभी आत्माएं यहां पर तपस्या करने आए हैं, और तपस्या के लिए हमें एक ये शरीर प्राप्त हुआ है, जो हमने कहा कि तपस्या अर्थात शरीर दमन नहीं है, तपस्या अर्थात अन्न का त्याग कर देना नहीं है, अनाहार। तपस्या शब्द ऐसा है जैसे ही तपस्या शब्द बोला जाता है क्या आ जाता है आंखों के सामने? उपवास दूसरा, अनाहार रहना दूसरा। उपवास करना है, उपवास का मुख्य अर्थ है पास रहना, परमात्मा के समीप रहना को उपवास कहा जाता है, उप अर्थात समीप। तो उपवास, और दूसरा उपवास का संबंध आत्मा से है। अनाहार रहना, टू बी विदाउट फूड, इसका संबंध देह से है। इस दो बातों में भिन्नता है। तो हम बात कर रहे थे तपस्या शब्द जो है, जैसे ही तपस्या शब्द सामने आता है शरीर दमन सामने आता है, क्योंकि इस तपस्या के बारे में आज तक संसार में कई सारी भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है। तपस्या कहते ही हठ योगियों की बात सामने आती है, परंतु बाबा जिस प्रकार की तपस्या हमें कहने को कर रहा है वो एक अलग प्रकार की तपस्या है। वो तपस्या इस देह में रहते, देह को साथ चलाते हुए करनी है। विदेश में एक संत हुआ है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, सुना है किसी ने नाम? बहुत ही प्रसिद्ध संत हुआ है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। वो जब अपनी मृत्यु शैया पर था तो जस्ट अभी शरीर छोड़ने ही वाला है तो उसके मन में ख्याल आया और वो अपने शरीर से बातें करने लगा। वो कहता है कि हे मेरे शरीर, तुमने मेरी कितनी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैंने इस शरीर को बहुत कष्ट दिया है, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, मैं तुम्हारा शत्रु बना रहा जीवन भर, जैसे इस देह का शत्रु बना रहा, परंतु तुम सदैव मेरे मित्र थे। तो मृत्यु के समय वो अपनी देह को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि साधना की जो उच्चतम अवस्था को मैंने अब प्राप्त किया है मृत्यु के समय, वो तुम्हारे ही कारण, तुम थे इसके लिए मैं ये साधना कर पाया, इसके लिए तपस्या के लिए ये देह का होना, स्वस्थ होना, उसको ठीक से संभाल करना बहुत आवश्यक है। बड़े भाग मानुष्य तन पावा, भक्ति में गायन है कि ये देह बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें इस जीवन में तपस्या करनी है और इसी देह में रहते करनी है, और इस देह का दमन करते हुए नहीं, देह को कष्ट देते हुए नहीं, परंतु आत्मा अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाए कि जहां उसे परम आनंद की अवश्य अनुभूति हो। जैसे योगी के लिए कहा जाता है, योगी का जो हार है बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही कम होता है, क्यों? परंतु जो अनार रहेगा वो निरंतर भोजन से दूर रहकर भोजन का ही चिंतन करना, इसको कहा जाता है अनाहार रहना। उपवास अर्थात उसमें आत्मा की उस स्थिति में स्थित हो जाती है कि जिसमें भोजन का भान ही भूल जाता है, इस देह की शून्यता आ जाती है। कहते हैं महावीर जो था 12 साल उन्होंने उपवास किया, 12 साल जो जैन धर्म के धर्म स्थापक है, उस 12 साल में 350 दिन ही उन्होंने भोजन किया, परंतु अगर आप उनकी देह को देखो तो ऐसा लगता नहीं है कि ये शरीर दमन किया होगा, क्योंकि तपस्या वहां पर भी चालू थी एक भिन्न प्रकार से। जैसे आत्मा आत्मा के स्वरूप में स्थित रहती है तो ये जो शरीर अलग ढंग से कार्य करना चालू करता है, फिर कम से कम भोजन में भी वही शक्तियां प्राप्त होने लगती है उसी भोजन से। तो तपस्या इतनी सूक्ष्म चीज है कि जैसे जैसे आत्मा तपस्वी बनती जाती है, जैसे जैसे हम अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाते हैं और लंबा समय उसी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, तो देह में भी परिवर्तन होने चालू हो जाते हैं। जिसको हम कहते हैं मस्ट है, वो मस्ट नहीं रहता है फिर, कि ये बहुत जरूरी है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी शरीर की आवश्यकताएं भी वहां कम होने लगती है और आत्मा एक न्यू रियलम, न्यू होराइजन में प्रवेश करती है, एक नए क्षितिज का दर्शन करती है। तो ये जो लक्ष्य है, लंबा समय, दीर्घकाल, चिरकाल तपस्या करते करते एक ऐसी अनुभूति होती है आत्मा को कि जिसके लिए देह मात्र जैसे एक साधन है, इसमें मैं आत्मा रह रही हूं और इसी देह में रह के मुझे संपूर्ण बनना है, बस यही धुन लग जाए। तो ये जो अवस्था है तपस्या की अवस्था है। कनेक्शन तो है, त्याग, तपस्या करते करते त्याग करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही हो जाता है, स्वतः ही छूट जाता है। एक है त्याग करना, त्याग करके उसी वस्तु का चिंतन करते रहना, तपस्या करते करते जैसे कोई झाड़ है पतझड़ में, वो उसके जो पत्तियां होते हैं वो गिर जाती है, वो झाड़ को भी नहीं पता चलता पत्तियां कब गिर गई और पत्तियों को भी पता नहीं कि कब हम गिर गए। तो त्याग जो है वो ऐसा त्याग हो कि करना ना पड़े, स्वतः ही हो जाए। जैसे एक साधु था, वो माला जपता था, वो एक गांव में प्रवेश किया उसने और देखा कि गांव में ग्वालिन, मिल्कमेड, वो दूध दे रही है, एक बर्तन है उसमें से दूध किसी और व्यक्ति को दे रही है, उसके पास भी बर्तन है पर जो व्यक्ति है वो उसी का प्रेमी है और वो जो दूध उसको दे रही है वो कंटिन्यूअस दे रही है, वो गिन नहीं रही है कितना है कितना हुआ, बस दे रही है दे रही है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और वो उसे दे रही है, वो तो बेचने वाली है दूध, वो जो है वो ग्राहक है, गिराइक है उसका, परंतु वो दे रही है। तो साधु उससे पूछता है कि तुम इसे माप तोल नहीं रही हो। तो वो एक बहुत अच्छे वाक्य कहती है कि जिससे प्यार है उससे गिनती कैसी। तो साधु अपनी माला को छोड़ देता है। तो जिससे अति प्रेम है उससे गिनती कैसी। और आज तो संसार में ऐसा है कि लोग त्याग का भी हिसाब किताब रखते हैं, इतने उपवास किए, कितना दिया, कितना क्या क्या किया, कितनी धर्मशालाएं खोली और क्या किया, त्याग का भी हिसाब किताब है संसार में। उसी तरह ब्राह्मणों का भी थोड़ा हिसाब किताब रखते हैं, कितनी भट्टियां की, इसका भी हिसाब किताब, इस तरह से हिसाब किताब रखना। त्याग का, त्याग एक ऐसी चीज है जो स्वतः ही हो जाती है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी मुरली में बाबा ने कहा है, परमात्मा प्रेम में अमृत वेला स्वयं को इतना भर दो कि फिर किसी और का प्रेम आकर्षित न करे। अब एक तपस्या है कि किसी का प्रेम आकर्षित न करे, आकर्षित हो रहे हैं, दमन कर रहे हैं, परंतु खींचातान, युद्ध की अवस्था है, द्वंद की अवस्था है। बाबा क्या कह रहे हैं, सहज योग। आज के मुरली में ही क्या लिखा है, कहते क्या हो स्वयं को, सहज योगी, और फिर कभी मुश्किल कभी सहज, ऐसा तो नहीं कहते हो ना। और फिर ऐसा क्यों कि एक ही व्यक्ति को कभी मुश्किल लगता है कभी सहज लगता है, किसी किसी को सहज लगता है किसी किसी को मुश्किल लगता है, ऐसा क्यों। सहज योग अर्थात परमात्मा प्रेम में आत्मा जब समा जाती है, इतना उसको भर दो प्रभु प्रेम से, बाबा के प्यार से, कि ये संसार स्वतः भूल जाए, इस संसार की जो बातें हैं स्वतः ही गिर जाए, जो वासना है वो विलीन हो जाए, जो इच्छाएं हैं तृष्णाएं हैं, ये चाहिए और वो चाहिए, ये रहे ही ना। ऐसी आनंदमय स्थिति जो है उसका नाम है तपस्या। यहाँ पर त्याग स्वतः ही हो रहा है, यहाँ पर आत्मा स्वयं में स्वयं स्थित है। तो आज का जो क्लास है इसमें हम बात कर रहे हैं तीव्र पुरुषार्थ की। तीव्र का अर्थ क्या होता है, तीव्र अर्थात इंटेंस, तीव्र अर्थात वेगवान, तीव्र अर्थात तीक्ष्ण प्रखर, पुरुषार्थ अर्थात एफर्ट, पुरुषार्थ अर्थात एक्टिविटी, पुरुषार्थ अर्थात कार्य। पुरुषार्थ बहुत ही श्रेष्ठ शब्द है, उसके लिए हिंदी शब्द नहीं है कोई, पुरुषार्थ पुरुषार्थ ही है, उसके लिए इंग्लिश शब्द कोई नहीं है। तो तीव्र पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ चल रहा है उसको और बढ़ा देना। अमृत वेले उठे, मुरली सुनी, ट्रैफिक कंट्रोल किया, याद में भोजन किया, नुमा शाम का योग किया, मुरली पड़ी, याद करके सो गए, ये है साधारण पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें तीव्रता आ जाए, इसमें इंटेंसिटी आ जाए, बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए, ये है तीव्र पुरुषार्थ। वो हम कैसे करें, आज हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस जीवन में तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा आज ही मुरली में बाबा ने दी है स्लोगन में, किसी को याद है, आज की ही मुरली में स्लोगन में तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है। स्लोगन में आज की मुरली के, आज की सुबह अव्यक्तवाणी चली सुनी सबने, तो उसमें आज का एक अच्छा स्लोगन है, उसी में बाप की शिक्षाओं को समय पर याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। पिछले संडे की मुरली अगर याद होगी तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, ये ज्ञान तो है बहुत सहज परंतु मुश्किल हो जाता है, उसके दो कारण होते हैं, कौन सा, पहला कारण था व्यर्थ और दूसरा कारण था ज्ञान भूल जाता है। उसमें बाबा ने और एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये भूलता क्यों है, डायरी में तो है, बुद्धि में भी है, पर टाइम पर समय की डायरी में वो दिखाई नहीं देता है, इसके लिए भूल जाता है और वहां गलती होती है, वहां फिर मुश्किल अनुभव होता है। इसके लिए बाबा ने चार विधि बताई थी पिछले संडे की मुरली में। फर्स्ट, बार बार ज्ञान की पॉइंट को सिमरन करो, रिवाइज करो। एक बार सुबह पढ़ लिया सुन लिया काफी नहीं है, क्या करना पड़ेगा, कीप ऑन रिवाइजिंग, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो बार बार ज्ञान की पॉइंट को रिपीट करो, अनुभव रिवाइज करो, एक। दूसरा अनुभव में लाओ, तीसरा चेक करो और चौथा चेंज करो। तो ये विधि है कि तीव्र पुरुषार्थ की जो परिभाषा आज के स्लोगन में है कि बाबा बाप दादा की जो शिक्षा है समय पर याद आ जाना, वही तीव्र पुरुषार्थ है। और समय के पर याद आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, रिपीट करते रहने पड़ेगा, अनुभव में लाते रहना पड़ेगा उन बातों को, चेक करते रहना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। तो अगर तीव्र पुरुषार्थ की यह परिभाषा है, किसी और अव्यक्त वाणी में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की और एक परिभाषा दी है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक बार की हुई गलती दोबारा न करना। ये दो बहुत मुख्य परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थ की, एक बार जो गलती की है उसको फिर से रिपीट न करना। महाभारत में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, जो पांच पांडव जब वनवास में रहते हैं तब सुना होगा वो यक्ष की कथा, कि जिसमें एक एक करके एक एक पांडव जाता है, यक्ष पूछता है कि मैं प्रश्न पूछूंगा, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो मरना पड़ेगा। उसमें से एक जो मुख्य प्रश्न वो जो पूछता है, जो केवल युधिष्ठिर उसका जवाब देता है, वो कहता है, प्रश्न होता है कि मनुष्य के सबसे बड़े दुख का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द अनहैप्पीनेस ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग जो इतने दुखी है उसका मुख्य कारण क्या है। तो युधिष्ठिर वहां एक जवाब देता है कि मनुष्य के पास इतने अनुभव होते हैं परंतु उन अनुभवों से वो सीखता नहीं है, यही उसके दुख का कारण है। रिसेंटली एक आईएएस की जो एग्जाम हुई थी, वहां पे आईएएस की एग्जाम होती है ना, उसमें एसे राइटिंग था, एसे का टॉपिक दिया था, द ओनली लेसन वी हैव लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन। जीवन में हमें इतने सारे अनुभव हो गए, इतने सारे धोखे मिल गए, इतनी सारी चोट हमने खाई, इतनी ठोकरें लगी, इतनी बार गिरे, पर विडंबना ये है, दैट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन दैट वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम द सिचुएशन। ये जो कुछ जीवन में अनुभव हो रहे हैं इनसे हम सीख नहीं रहे। इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, स्टॉप चेक एंड चेंज, स्टॉप चेक चेंज, रुकना पड़ेगा। भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, कहां जाना है स्पष्ट नहीं है, बस भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, जस्ट रनिंग 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 रनिंग, स्टॉप। ये पुरुषार्थ के मार्ग की भी बात कर रहा हूं मैं, केवल संसार की बात नहीं, ये जो हमारा दिव्य, ये जो जीवन है अलौकिक, इस अलौकिक जीवन में भी हम चल रहे, आगे बढ़ रहे, परंतु जाना कहां है। वो यहां जब मधुबन में आते हैं तो थोड़ी सी स्मृतियां जागती है, फिर से अपने कार्यक्षेत्र में जाते ही वहां फिर से विलीन हो जाता है। स्मृति और विस्मृति का सारा खेल है। यहां आ गए तो स्थिति बहुत ऊंची है, क्यों, क्योंकि सारी स्मृतियां है, सारी मेमोरीज जाग उठती है, दिव्य गुण जाग उठते हैं, श्रेष्ठ संकल्प आने लगते हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसा करना है, परंतु यहां से जाते ही फिर से विलीन हो जाता है, क्यों। स्मृति एंड विस्मृति, इसके लिए विधि है, बार 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 रिवाइज करते जाओ इस ज्ञान को। एक बार पढ़ना, जैसे पिछले संडे की मुरली में था, बाबा ने कहा था यह ज्ञान बहुत सहज है, बहुत सारी बातें बताई थी उसके लिए, क्यों सहज है, तो बाबा ने सबसे पहली बात कही थी, क्योंकि टाइम पर आए हो, मेहनत मक्खन और मनन किसी और ने किया, जो पहले वाले थे उन्होंने ये सब किया, और डबल विदेशियों से मुलाकात, याद है पिछले संडे की मुरली, टाइम पर आए हो, जैसे मक्खन खाने के लिए, मेहनत मनन और मक्खन किसी और ने निकाल के रखा है, आप खाने के लिए आए हो, एक कारण ये सहज है। दूसरा कारण अनुभव, हर एक ज्ञान की पॉइंट, ज्ञान की पॉइंट नहीं है पर हर पॉइंट अनुभव है, हर पॉइंट में अनुभव है, तो ये जो ज्ञान है अनुभव है, ये केवल कुछ रटने वाली बात नहीं है, यह हर चीज का अनुभव है, और जो चीज अनुभव में आ जाती है वो सहज है। दूसरा कारण अनुभव। तीसरा कारण, बाबा ये कहानी के रूप में सुना रहे हैं सब कुछ इस ज्ञान को, इसके लिए सहज है। चौथा कारण, रिपीट हो रहा है, ये हमने पहली बार अनुभव नहीं किया है, कई बार अनुभव किया है, पहली बार संपन्नता को नहीं पाया है, कई बार संपन्नता को पाया है, कई बार आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, वो उस दिव्य अवस्था का अनुभव किया है कि जिसमें केवल आत्मा का ही ख्याल है, फिर इस देह का भी कितना कम से कम ख्याल है, ऐसी अवस्था का भी अनुभव हमने किया है। तो रिपीट। और एक बात, प्राप्तियां, ये ज्ञान सहज क्यों है? फिफ्थ कॉज, प्राप्तियां है इसमें, बहुत सारी प्राप्तियां है। सिक्स्थ, क्योंकि नजदीक का संबंध है, जो नजदीक का संबंध है वो भूलता नहीं है। बाबा ने ये छह कारण पिछले संडे की मुरली में कहा था, जिस वजह से ज्ञान और योग क्या है, सहज परंतु मुश्किल क्यों हो जाता है? एक तो व्यर्थ संकल्प, और दूसरा जो हमने कहा भूल जाना, जिसके बाबा ने निवारण भी बताया था। एक मुख्य कारण था व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प के हैमर से क्या करते रहते हैं? समस्याओं को तोड़ते रहते हैं। व्यर्थ संकल्प अर्थात, उसमें भी बाबा ने कहा था, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और कब तक होते रहेगा, मुश्किल है। ये सारे चारों संकल्प बाबा ने कहा, ये चारों संकल्प क्या है? वेस्ट। जो आज की भी मुरली में कहा है, व्यर्थ संकल्प, जिसको बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा? बातें। बातें, एक तो बातें है या तो बाप है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बाप है बीज, बातें है वृक्ष। वृक्ष को पकड़ना चाहते हो तो ना तो वृक्ष हाथ में आता है, ना तो बाप हाथ में आता है, और वृक्ष को समाने की शक्ति भी नहीं है। फिर क्या करने लगते हैं? शिकायत। किसकी शिकायत? परिस्थिति और व्यक्तियों की। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। और फिर यह भी प्रश्न होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इंग्लिश में एक किताब है वाई मी, बहुत अच्छी किताब है वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर परिस्थिति मेरे ऊपर क्यों आती है, बाकी लोगों पर क्यों नहीं आती। 1687 की एक मुरली है, 10th जनवरी 1987 मुरली है, जिसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे हैं किसी ने, तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चे क्या क्या कहते हैं जब समस्या आती है। तो कहते हैं कि शिव बाबा को क्या पता, वो तो निराकार है, उसको तो अनुभव ही नहीं है। फिर कहते हैं ब्रह्मा के लिए इसको तो लिफ्ट है बाबा की, और जो ब्राह्मण आत्मा है दूसरी, जब कहती है कि ऐसे क्यों परेशान हो रहे, तो उनको कहते हैं तुमको क्या पता, जब तुम्हारे पर आएगी तो तुमको भी पता चलेगा। ये तीन बातें उसमें बाबा ने कही है कि जब ब्राह्मण आत्मा है कैसे चतुराई करती है, ये सभी बातें कहती है। बाबा ने आज कहा जो बातें आ जाती है तो फंस जाते हैं उसमें, चक्रव्यूह है, इट्स अ विशियस साइकिल, और वो फंस निकलने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते, ऐसा उसमें फंस जाते हैं, कंप्लेंट 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 करते करते। आधा कल्प से बातें सुनते आ रहे हो, कौन सी बातें सुने आधा कल्प से, आज की मुरली से? रामायण भागवत महाभारत, जब बातें थी तो बाप नहीं था, अब भी अगर बातें है तो बाप नहीं है। कितनी अच्छी बात कही, बाप को खो देते हो। तब बातें थी, वो भी क्या है, लंबी बातें ही है, तब बाप नहीं था, अब भी अगर बातें है तो बाप नहीं है। एक ही चीज हो सकती है, बाप या बातें। तो हम बात कर रहे थे तीव्र पुरुषार्थ की। तीव्र पुरुषार्थ की जो दो परिभाषा है, एक परिभाषा थी समय पर ज्ञान याद आ जाना, दूसरी परिभाषा थी एक गलती जो हुई है उसे रिपीट न करना। उसके लिए हमने देखा कि मनुष्य दुखी इसलिए है कि अनुभव हो रहा है परंतु सीख नहीं रहा है। फिर हमने देखा कि ये जो ज्ञान है अति सहज है, अति योग भी सहज है, परंतु मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्यों हो रहा है? पिछले संडे कहा था व्यर्थ संकल्प और भूलना, और आज क्या कहा, मुश्किल क्यों है? क्योंकि बातें बीच में आ रही है। चर्चा का विषय है कौन सी बातें बीच में आ रही है, ऐसी वो कौन सी बात है जो हमारे माया की परिभाषा, एक माया की परिभाषा ये भी है, हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो प्रलोभन, हर वो आकर्षण जो हमें और बाबा को दूर कर दे, वो माया है। माया की सरलतम परिभाषा क्या है कि वो चीज जो हमारे बीच में आ जाए वो माया है, और हमारा प्यार कम हो जाए, हमारी जो लगन है पुरुषार्थ की वो कम हो जाए, हमारा जो पढ़ाई से प्यार है वो कम हो जाए, मधुबन भूमि से प्यार है वो कम हो जाए, कहेगा नहीं कोई पर हो जाता है अंदर। इसके लिए तो सालों बीत जाते, बाद इतने इसके लिए बाहर इतने लेट आते हैं यहाँ पर। जरूर थोड़ा प्यार कम हुआ है, प्यार अगर होता तो बार बार आते। तो ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो बीच में आ जाती है, जिससे ये ज्ञान योग सहज का जो सहज है वो मुश्किल हो जाता है? हर एक अपने अपने अनुभव से बताए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में आई और जिसके वजह से मुश्किल लगता है? कौन सी वस्तु? नहीं, हिसाब किताब नहीं बताओ, दूसरी बातें बताओ। हिसाब किताब ये जैसे एक्सक्यूज है, हम सब कुछ हिसाब किताब के ऊपर डाल रहे हैं। डोंट पुट द ब्लेम ऑन हिसाब किताब। हाँ, करियर कॉन्शियसनेस, उच्चाकांक्षी, एम्बिशियस, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना भी जीवन में आज के समय में, अब का जो युग है, जबकि भगवान संसार में आ चुका है और यहाँ इतना बड़ा श्रेष्ठतम कार्य चालू है, इस समय हम अगर ये सोचे कि लौकिक में हम बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये भूल सकता है। टू मच एम्बिशियस हो जाना इस समय नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि वो चक्र ऐसा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई चाहे कि मुझे ये बनना है, ठीक है, वो बन गया इंजीनियर, बाद में वो कहता है कि अभी मुझे एक्सपीरियंस भी लेना है, अभी एक्सपीरियंस का कोई एंड है? पूरा लाइफ भी अगर फिर मैं करूंगा ये, ऐसे नहीं होता है। वो करो, परंतु बाबा ने जो शब्द कहा है, बैलेंस, लौकिक अलौकिक, लौकिक पढ़ाई का अलौकिक पढ़ाई के साथ बैलेंस। तो आपने जो कहा करियर कॉन्शियसनेस, वो अच्छी बात है, हर एक ने आगे बढ़ना है, हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत क्षमताएं हैं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, परंतु यदि इसको अगर पूरा ही छूट गया वो करते करते, इसको हम टाइम ही नहीं दे पा रहे, सारा ध्यान हमारा उधर ही है, उसी के बारे में संकल्प, उसी के बारे में सोचना, दिन रात उसी का चिंतन, तो ये खो जाएगा। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto it. Bible में एक statement है, जब उसके Jesus Christ के शिष्य उससे पूछते हैं कि हम खाएंगे क्या, हम पहनेंगे क्या, हम रहेंगे क्या, वो कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ, तो वो ये इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो वो कहता है Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things, संसार की ये सारी जो वस्तु है, shall be added unto it. एड हो जाएगी, वो आपे ही मिल जाएगी। अगर हमारे अंदर इतनी लगन है कि मैं जो भी करूंगा, करियर कॉन्शियसनेस जो भी है, वो करियर भी किस लिए, वो जो कार्य भी कर रहे इस यज्ञ में वो काम आए, हम जो करें भी वो इस यज्ञ में लग जाए, परमात्मा के यज्ञ में लग जाए, देन इट इज वर्थ वाइल, नहीं तो वो भी वेस्ट ही है। एक तो ये कारण है बातें, दूसरी बातें माताओं की तरफ से मोह जाल। किसका मोह? परिवार का मोह। बाबा ने इसका भी उत्तर आज की मुरली में दिया है, तुम सब कौन हो? मेहमान। महान पूज्य आत्मा बनने की निशानी की विशेषता है स्वयं को क्या समझना? मेहमान समझना। इस संसार में भी मेहमान और इस देह में भी मेहमान, दोनों इधर मेहमान। कैसे? मेहमान अर्थात विजिटर, आगंतुक। मेहमान की क्या विशेषता होती है? जैसे मेहमान किसी घर में आया तो उसका किसी भी चीज में आकर्षण नहीं होता है, किसी भी चीज में अपनापन नहीं होता है, ममत्व नहीं होता है, उसको पता है ये किसी और की है, और उसको ये भी पता रहता है कि मुझे यहां से जाना है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज माइन, ये सब किसी और का है। निरंतर यह स्मृति। एक विदेशी भारत आता है, एक फकीर के पास, भारत में बहुत सारे फकीर घूमते रहते हैं इधर उधर, तो वो कहता है मुझे आपकी झोपड़ी देखनी है, तो फकीर उसको अपनी झोपड़ी पर लेके जाता है, झोपड़ी में लेके जाता है, और वो विदेशी जो व्यक्ति होता है, फॉरेनर, वो देखता है कि वो कहता है वेयर इज योर फर्नीचर, तो वो फकीर कहता है कि फर्नीचर आई एम अ, तो वो पूछता है, फकीर उससे पूछता है कि वेयर इज योर फर्नीचर, तो विजिटर कहता है, फॉरेनर कहता है आई एम अ विजिटर, फकीर कहता है आई एम ऑल्सो विजिटर, You are visitor in India, I am visitor in this of this world. मैं इस पूरे जगत में ही क्या हूं? मेहमान हूं, या मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये मेहमान जो भाव है, ये मन की अवस्था है, ये मन की आंतरिक स्थिति है जिसमें हमने ओनरशिप को त्याग कर दिया है। ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जो पति पत्नी बच्चा बच्ची पोता पोती ये जो आए हैं सब आत्माएं हैं, ये अपना अपना भाग्य लेकर आई है, आज हमारे पास है, इसके पहले इसके बाद कहीं और चली जाएगी। तो दिस इज, ये जो साक्षी भाव है ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बार बार बाबा ने कहा है एक बात कि हरेक को आत्मात्मा समझो, हरेक को भाई भाई समझो। ये अभ्यास चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले हमारे आसपास रहने वाले हैं उन्हीं से चालू करना है। ये आत्मा है, ये आत्मा है और ये आत्मा है, सब अपना भाग्य लेके आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो है वो है इसके लिए, और कुछ समय के बाद हम चले जाएंगे। जैसे हम यहां से कहीं जा रहे हैं, बीच में हॉल्ट होता है, जैसे अहमदाबाद हमें रुकना है, 2 घंटे रुकना है, फिर नेक्स्ट ट्रेन है, तो वहां हम वेटिंग रूम में है, तो दिस होल वर्ल्ड इज अ वेटिंग रूम इन सराय धर्मशाला। अब वहां वेटिंग रूम में क्या करना है, 2 काम कर सकते, एक तो वेटिंग रूम को खराब कर दो, कपड़े इधर ये कोई लोग कहते ना स्पिट करने की थूकने की आदत होती है, वो भी कर सकते हो, कोई लोग है जो उसको अच्छा से रख सकते हैं। तो ये अगर संसार वेटिंग रूम है, थोड़े समय के लिए हम यहाँ आए, आज के मुरली में कहा गए कि गए, आना और जाना, अभी यहाँ है फिर जाना है फिर आना है, ये मेहमान अर्थात ये मेहमान की परिभाषा है। मेहमान मीन्स अनअटैच्ड, पर ये 1 दिन से नहीं होगा, 2 दिन से नहीं होगा, केवल सोच लेना उससे भी नहीं होगा, ये ज्ञान उतना आसान नहीं है, इसको अंदर अनुभव में लाना कि मैं मेहमान हूं। अच्छा, इसमें एक दूसरी और एक बात है जो आज की मुरली में तो नहीं है, परंतु और एक बात मुझे याद आ रही है, एक तो अपने आप को मेहमान समझना, दूसरा है एक तो गेस्ट समझना, दूसरा है होस्ट समझना। जेन फिलॉसफी आपने सुनी होगी, जेन मास्टर्स जो होते हैं ना, एक प्रकार के सिद्धांत है ये। जेन फिलॉसफी में क्या कहा जाता है कि स्वयं को मेजबान अर्थात होस्ट समझो। होस्ट अर्थात क्या, कि मैं आत्मा होस्ट हूं और ये सारे मेहमान हैं, और मेहमान क्या, आज है और चले जाएंगे, अभी घर के जो लोग हैं वो मेहमान है, मैं मेहमान नहीं हूं, ये वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग एल्स नाउ, एक अनदर फिलॉसफी, कि जो कहता है कि मैं मेजबान हूं, मैं होस्ट हूं, और ये जो लोग आ रहे और जा रहे दे ऑल आर गेस्ट, तो मेरा उनसे क्या लेना देना, वो आज है थोड़ी देर में चले जाएंगे, तो आई एम होस्ट दे आर गेस्ट, एक तो ये समझो कि मैं गेस्ट हूं और यहां का मेरा कुछ भी नहीं है, या फिर एक ये भी सिद्धांत है, ये भी कभी इसकी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं गेस्ट हूं और ये होस्ट है। एक बार दिखाया, एक व्यक्ति होता है उसके घर में, वो पार्टी का ऑर्गेनाइज करता है, पार्टी इतनी बोरिंग होती है, कई लोगों को बुलाता है वो, तो वो पार्टी देर रात तक चलती है। फिर एक दूसरा आदमी जिसने पार्टी रखी थी उसी से कहता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि इसने पार्टी रखी है, वो उसे कहता है कितनी बोरिंग पार्टी, ऐसी पार्टी में तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। तो जो जिसने बुलाया रहता है ना, वो भी भूल जाता है कि मैंने ही बुलाई है पार्टी, वो कहता है हाँ चलो अभी तुरंत निकल जाते हैं यहां से, और वो निकलकर बाहर चले जाते हैं दोनों। चलते 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 जो होस्ट रहता है उसको याद रहता है, अरे ये तो मेरा ही घर था, मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो होस्ट हूं और ये लोग तो आने जाने वाले हैं, तो आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आई एम होस्ट, तो मैं तो इधर रहूंगा, ये निकल जाएंगे, ये चले जाएंगे। तो ये भी एक एटीट्यूड हो सकता है कि मैं कौन हूं, होस्ट हूं, और ये संसार के जो लोग हैं, ये जो भी आत्माएं हैं, जो भी है, सब कुछ आ रहे और जा रहे हैं, यहां कुछ भी नित्य नहीं है, मृत्यु है, जीवन है, सुख है, दुख है, बुढ़ापा है, ये सब होगा, पर आ रहा है और जा रहा है, जवानी है आज, कल बुढ़ापा हो जाएगा, कुछ भी नित्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनित्य है संसार में। तो ये भाव भी उस वैराग्य की स्थिति में स्थित करेगा। तो हम बात कर रहे थे बातों की, और कौन सी बातें आती है, तो ये था मोह, तो उसके लिए बाबा ने आज ही की मुरली में कहा मेहमान समझो अपने आप को। तो ये जो मोह है, मोह की जो रगे है, मोह के जो धागे है, मोह के जो बंधन है, मोह की जो डोरी है, चेन है, सलाखे है, प्रिजन है, जिसमें आत्मा कैद है, उससे स्वयं ही को मुक्त करना पड़ेगा। बस एक संबंध एक डोर, एक कनेक्शन, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। अभी अभी मुरली में गीत चला था, ये याद है? अभी अभी मुरली में गीत चला था ये, कि कनेक्शन एक से, पर माया ये डोर बांधने नहीं देती। माया भी कम नहीं है, ऐसे भी था उसमें। पल्लव वही मुरली है, ये पल्लव वाली मुरली है, कन्या की जो उदाहरण जो दिया था शुरुआत में, वही मुरली। हाँ, तो वो जो डोर उसके साथ रखनी है, वो भी एक तपस्या है। तो ये मोह की बात है। और कौन सी बातें बीच में आ जाती है? एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं कि ये मेरे लिए ये करे। बाबा ने कहा है ब्राह्मण आत्मा की सूक्ष्मतम इच्छाएं है ये, तीन चार इच्छाएं। सबसे पहले एक होती है, संसार के लोगों की इच्छा तो अलग प्रकार की होती है, नाम मान शान और कामनाएं। ब्राह्मण आत्मा की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? सबसे पहले प्यार, उसे प्यार चाहिए। प्यार मांगने की चीज नहीं है, वो स्वतः प्राप्त हो जाता है। प्रेम, लव, एक्सपेक्टेशन ऑफ लव, कि दूसरे मुझे प्यार करे। दूसरा केयर, दूसरे मेरी केयर करे। अगर मैं बीमार पड़ गया, इफ आई फॉल इल, पीपल शुड कम एंड विजिट मी, वो आके मुझे देखे, थोड़ी बातें करे। अगर नहीं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा रहता है मन में। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेशन सूक्ष्म में बंधी रहती है, अंदर ही अंदर, कि लव, केयर, देन रिस्पेक्ट, कि दूसरा मुझे मान दे, आदर करे। आज के मुरली का वरदान क्या है? रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा, रिगार्ड कैसे मिलेगा? दो तो मिलेगा, रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा। जैसे संसार में कहावत है, छोटों से प्यार और बड़ों को रिगार्ड, परंतु तुम्हें क्या करना है, सभी को अपने से बड़ा समझना है। तो क्या है, सबके स्नेही बन जाएंगे। दूसरा, टीचर से मुलाकात। आज की मुरली में लंदन पार्टी, टीचर से मुलाकात। क्या कहा? महान बनने के लिए नम्रचित बनो। नम्रचित अर्थात दूसरों को अपनी सीट दे दो। दूसरों को सीट दे दो तो वो अब सीट से उतर कर तुमको सीट में बिठा देगा। पर हमको चिंता रहती है कि हमने दी और उसने नहीं दी तो नाउ टेल। बाबा ने आज की मुरली में कहा ना, क्या कहा, कि सीट श्रेष्ठ स्थिति सीट उसे दे दो तो वो स्वतः ही उतर के तुमको दे देगा। तो रास हो जाएगी, डांस हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा संस्कार मिलन की रास यहाँ करेगा, सबसे ज्यादा बाप को सहयोग यहाँ देगा, वो फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ डांस करेगा। आज की मुरली में अगर आप खुद बैठेंगे तो आपको उतारेंगे। हम बात कर रहे हैं, अगर हमने जगह दे दी पर उसके बाद में उसने दी नहीं तो वो तो एक्सपेक्टेशंस, ये भी सारी एक्सपेक्टेशंस। तो दूसरों से सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, लव मिले, केयर मिले, अटेंशन सीकिंग, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। एक होता है ना, एक कुछ प्रकार के मरीज होते हैं कि जैसे कोई बहन है कि जिसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता अभी घर पर, तो वो क्या करेगी, बीमार पड़ जाएगी। तो जब बीमार पड़ते हैं तो फिर सब ध्यान देने लगते हैं। पिछले 6 मास से हॉस्पिटल में लगभग एवरी मंथ 2 to 3 सुसाइड केसेस आ रहे हैं, माउंट के एवरी 2 to 3। वो कौन करती है? यंग गर्ल, अभी शी हैज सम प्रॉब्लम, उसका कोई सुन नहीं रहा है, फादर इज नॉट लिसनिंग, तो क्या करेगी, कुछ तो ले लेगी। और जब आईसीयू में आ जाती है तो सारे देखने आते हैं, पर जो पॉइजन से वो भी सारे डुप्लीकेट ही है, मतलब कुछ होता नहीं उनसे। दैट इज अनदर स्टोरी। एक तो बीच में आया था अभी अभी पॉइजन लेके, तो पॉइजन देखा उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। तो ये सारा जो है ना, अटेंशन सीकिंग के लिए है, कि सबको पता तो चले मुझे भी कुछ है, मैं भी कुछ हूं, मेरे को भी कुछ हो रहा है। कोई ये तो ऐसे समझते जैसे हमारा कुछ है ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है। तो ये भी एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है ना, तो दिस इज ऑल्सो बातें हैं जो इस ज्ञान योग को मुश्किल कर देती। और कौन सी बातें हैं? गाइड नहीं, हम बात कर रहे हैं ज्ञान और योग में ऐसी कौन सी बातें आ जाती है जिससे ये मुश्किल हो जाता है। रुकावट, ऑब्स्ट्रैकल्स, व्हाट आर द ऑब्स्ट्रैकल्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग इन बिटवीन दैट आर मेकिंग ज्ञान एंड योग डिफिकल्ट। व्यक्ति आ जाता है, कोई व्यक्ति से प्यार हो जाता है, कोई व्यक्ति की विशेषता अच्छी लगने लगती है, किसी के गुण अच्छे लगने लगते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और ये हम संसार के व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे, ब्राह्मण आत्माओं की आपस की बात कर रहे हैं। एक को दूसरा अच्छे लगने लगे, जबकि बाबा ने कहा है तुम्हारी प्रीत केवल एक से होना चाहिए, एक के अतिरिक्त और किसी को भी याद किया तो तीसरा नेत्र बंद। एक बाप दूसरा ना कोई, तीसरा आया तो तीसरा नेत्र बंद। आज भी तीसरे नेत्र को याद किया बाबा ने, त्रिशूल शक्तियां हो तुम्हारे हाथ में, त्रिशूल है, त्रिशूल स्थिति की निशानी है, त्रिनेत्री। तो ये जो नेत्र है ज्ञान का नेत्र है, ये बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद अगर हो गया तो कंफ्यूजन, जजमेंट पावर खत्म, फिर समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई व्यक्ति बीच में आ गया। तो बातों में है एक व्यक्ति, वैभव, वैभव अर्थात धन संपत्ति, ये सारी जो चीजें वो बीच में अगर आ जाती है, उसी में पीछे लग गए। ये समय कौन सा चल रहा है? आज बाबा ने कहा फ्रांस ग्रुप, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले हो, कदम कदम में इस यात्रा में पद्मों की कमाई जमा करनी है, नॉट दैट वेल्थ, वो तो आज है और कल नहीं है, वो आवश्यक है, जितना चाहिए उतना आवश्यक तो है, परंतु सब कुछ भूल के केवल उसी के पीछे लग गए और ज्ञान योग एक तरफ रह गया। ये इस समय बुद्धिमानी नहीं है। हर कदम में पदम, ऐसे अपने आप को माना मालामाल समझते हो, ये खजाना अखूट खजाना है, इस खजाने की चाबी है, चाबी हमेशा लगती है, कभी अटक तो नहीं जाती है, चाबी है, मैं अधिकारी आत्मा हूं। तो ये चाबी हमेशा हमारे साथ रहे। अधिकारी आत्मा हूं मतलब ये समान की स्थिति है, ये आत्मिक स्थिति है, श्रेष्ठतम स्थिति है कि मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं और इस देह का, इस रचना का भी मालिक हूं, रचना मुझे आकर्षित ना करे। अभी अभी वरदान था सोमवार, तो ये भी एक बात है, वैभव, करियर, लगाव, और कौन सी बातें हैं जो बीच में आती रहती, जजमेंटल हो जाना, दूसरों को जज करना, जज नॉट यू शैल बी जज्ड, और ईगो, मैं आ जाता है। कल की मुरली थी ना, टकराव का कारण देह अभिमान, टकराव होता है, संघर्ष होता है, बोल बोल का टकराव, भावना भावनाओं का टकराव, संस्कार संस्कारों का टकराव, विचार विचारों का टकराव, एक विचार दूसरे विचार से टकराते हैं। 2010 की मुरली, डबल विदेशियों से मुलाकात, बाबा ने कहा था माया के दो रूप है, पहला रूप व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैं राइट हूं, आई एम राइट, पहले मानो कि मैं राइट हूं, बाद में चर्चा करेंगे, नो टॉक टिल देन, पहले मान लो कि आई एम राइट, नो डिस्कशन, मानने को ही तैयार नहीं है, इतना अभिमान और अहंकार है कि हम जो सोच रहे, हमने जिस तरह बाबा की श्रीमत को समझा है बस वही राइट है, उसने भी समझा है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कि जो ज्ञान में नहीं है, जो ज्ञान में है उनकी बातें कर रहा हूं, हम ये सोचते कि हमने इसको सही ढंग से समझा है एंड आई एम राइट। तो ये जो आई एम राइट है ये टकराव उत्पन्न करेगा, और टकराव उत्पन्न हो गया तो योग खत्म, ज्ञान बुद्धि से भाग जाएगा, रफु चक्कर। हाँ, तो टकराना नहीं है, टकराने के लिए इस यज्ञ में नियम है, सिक सिक झुक झुक मरमर, झुक जाओ, टकराना नहीं है। अगर हम टकराए और जीत गए तो भी कोई ज्यादा प्राप्ति नहीं है, क्योंकि हमारा योग फिर भी खत्म हो जाएगा। हमारी स्थिति की कीमत है 1 करोड़, 1 करोड़, और टकराव में जो जीत हासिल हो रही है उसकी कीमत है 1 करोड़। क्या चाहिए? आर्गुमेंट्स, टकराव, कोई कहे कि मैं राइट हूं, हमने कहा, हम कह दे कि भाई तू ही राइट है, ठीक है, ये मान लेना, ये स्वीकार कर लेना और झुक जाना, दिस इज मोर प्रॉफिटेबल। वो टाइम पे थोड़ा कष्ट होगा, परंतु स्टिल इट इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, नहीं तो शाम का योग समाप्त, दूसरे दिन का अमृत वेला समाप्त, संकल्प चलने चालू करेंगे। जो आज की मुरली में कहा ना, बातें आती है फिर शिकायत करने लगते हैं व्यक्ति और परिस्थिति के बारे में, फिर उसमें फंसते हैं, निकलना चाहते हैं परंतु नहीं निकल पाते। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव, ऐसी जाल में फंसते हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते, फिर खुद ही खुद के जाल में फंस जाते हैं। तो ये भी एक बात है। तो टकराव जो होता है ना, टकराव कहीं पे भी, किसी से टकराना नहीं है, नो फ्रिक्शन, नो संघर्ष। अगर कोई कहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं तो कह दो कि हो तुम, एक्सेप्ट कर लो, चुप हो जाओ, यहां पर चुप रहना ही बुद्धिमानी है। ट्रुथ डजंट नीड टू बी प्रूव्ड, सत्य स्वयं सिद्ध है, असत्य के बादल सत्य के सूर्य को ढक नहीं सकते, और परंतु उसके लिए सत्य में विश्वास चाहिए। देयर वॉज वन सन्यासी इन लंडन, एक सन्यासी था कि जिसको मर्डर केस में 22 साल के लिए सजा हो गई। आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद ये प्रूव हुआ कि मर्डर उसने किया ही नहीं था, किसी और ने किया था, तो उसको छोड़ दिया गया। तो वो कहता है कि मेरी यहां अच्छी साधना हो रही है, और वो तो मुझे पहले से ही पता था कि ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं इस तरह का, पर मुझे ये भी पता था ये मेरे ही किसी और जन्म के हिसाब किताब है, और यहां जेल में अभी मेरी अच्छी साधना हो रही है, और रहने तो 2-3 साल, आई एम कंटिन्यूइंग माय तपस्या। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है वो लॉन्ग टाइम का कार्मिक अकाउंट्स आर गेटिंग सेटल्ड। इसके लिए हम ये ड्रामा जो है न्यायकारी है, इस ड्रामा में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि इस ड्रामा में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ऊपर से दिख रहा है, हम देख रहे हैं छोटी नजर से, ट्यूब्यूलर विजन, कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, बट हमारी विजन बहुत ही छोटी है। पूरा अगर ड्रामा देखे तो बाबा को तीनों काल पता है क्या कहां हो रहा है, आदि मध्य अंत। इसके लिए उसके मन में कोई संकल्प नहीं है, उसके मन में कोई हलचल नहीं है, हमारे मन में हलचल है, वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस, क्योंकि एक कालदर्शी है या दो कालदर्शी है, ज्यादा से ज्यादा त्री कालदर्शी नहीं है, हमें तीन काल का दर्शन करना है एक साथ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ही होगा, तो मन में संकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ के इस मार्ग में ये सारी बातें हैं, और तो असंख्य बातें हैं। और भी किसी को कोई बातें हैं तो बताइए। हाँ जी, करना बहुत अच्छी बात है। पहले आप, आज की मुरली में है, पहले आप कि पहले आप कर दो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी, डांस हो जाएगा, सहयोग मिल जाएगा, सब हो जाएगा। हर चीज में आगे कर देना दूसरों को, नहीं हो सकता है, यही तो बाधा है, यही तो बातें हैं, वहां बाप खो जाता है। कौन खुश रहता है? हाँ, सत्य जो है, सत्य में तो स्वयं खुशी है ना। सत्य ऐसी चीज है कि हमारा सत्य में विश्वास होना चाहिए, जो बहन जी कह रहे थे ना कि हमारा सत्य में कितना विश्वास है। अगर अच्छा उदाहरण के तौर पर कोई हम पर आरोप लगा दे कि यू हैव डन दिस, अब हमने किया ही नहीं है, पर वो आरोप लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, अब प्रश्न है क्या किया जाए। हम अपनी बात को नॉर्मल विदाउट एनी पैशन, आवेश, एंगर कह दे, बस ये है, अगर उसके बाद में भी अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर यहां पर बहुत सूक्ष्म विचार की आवश्यकता है कि ये जरूर पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है। जैसे हम ट्रेन की बुगी में बैठे हुए, अचानक कोई आता है और गालियां देना चालू करता है और चला जाता है, ना हमने उसे कभी जाना, ना कभी देखा, वो आया, गालियां दी और चला गया, वाई दिस? तो यहां फिर वो वाली बात है कि जरूर कुछ ना कुछ है। या अच्छा, और एक दूसरी बात, हमारे सबसे ज्यादा हिसाब किताब किसके साथ है? नहीं, कौन सी आत्माओं के साथ है? ब्राह्मण आत्माओं के साथ, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकतु होने हैं। जन्म जन्म हमने सबसे ज्यादा किसके साथ बिताए हैं? सतयुग त्रेता ब्राह्मणों के साथ, द्वापर कलयुग ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण जब हम राजा थे कभी और किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया था तो कितने लोग मारे गए थे? जब हम कोई साहूकार थे, किसी की जमीन ले ली थी, वो पूरा परिवार मर गया था। अब वही, दे हैव कम इन अवर फ्रेंड सर्कल, किस लिए? जन्म जन्म के हिसाब किताब चुकतु करने के लिए। वही हमारे इंचार्ज, वही हमारे जूनियर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन, ये सब कौन है? ये सब वही जन्म जन्म की आत्माएं आई है यहां पर, किस लिए? हिसाब चुकतु करने के लिए। एक तरफ तो भगवान मिल गया, पर साथ में हिसाब किताब भी है। इसकी तो बहुत खुशी है, पर इसका बहुत दुख है। तो दुख नहीं होना है, ये हिसाब चुकतु हो रहे। जब भी बाबा ने कहा ना, इनको क्या समझो? पेपर समझो। ब्राह्मण परिवार से आने वाली जो समस्या है, एक मुरली है, 69 की एक मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार से भी सारे पेपर आएंगे, पर उनको क्या समझना है, पेपर नहीं समझना, उनको परिस्थिति या प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, पेपर समझना, हर चीज को जो हो रहा है उसको पेपर समझना, ये सोचना कि क्लास आगे बढ़ रहा है, सेकंड थर्ड समझ रहा है, ये अनुभवी बनाने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये पेपर से पास करने के बाद हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर समझना विघ्न विनाशक की जैसे डिग्री मिलने वाली है, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, दिस लाइफ इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, यहां बहुत ठोकरे है, तो यहां से डिग्री जो मिल जाती है ना, तो वी आर मोर पावरफुल। जैसे एक चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है, समबडी हैड सेंट, कि जिसमें एक डियर है, हिरन, कि जिसमें एक तीर लगा उसको, वन डियर, एक तीर, और वो घायल होकर नीचे गिर गया है, ऐसे नीचे दिखाया हुआ है जैसे रो रहा है। वही हिरन कुछ समय के बाद बहुत सारे तीर लगे हुए है, एंड इट इज स्टैंडिंग, पूरा कुछ भी नहीं हुआ है उसको। ये है मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कि पहले किसी ने कुछ कह दिया, घायल, किसी ने कुछ खराब व्यवहार कर दिया, घायल, दो दिन तक डिप्रेशन, ऐसा इसने क्यों बोला, किसी ने कह दिया अरे ये क्या है, ऐसा होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मधुबन में कोई आया, कोई माता ने बहुत सेवा की, दो मास सेवा की, और अभी जा रहे, और किसी ने कह दिया क्या बस खाए पिए और चल दिए, इट्स वेरी हर्टिंग, और बोल दिया तो उसको कितना, तो ये जो अवस्था है ना, ये सबसे इम्यून हो जाना, किसी के बोल और किसी के व्यवहार से ऊपर निकल जाना, ये तब होगा, आत्मिक दृष्टि होगी, और उसको भी हम आत्मा देखेंगे, क्योंकि दूसरी आत्माएं जो कर रही है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने संस्कार अनुसार कर रही है, संस्कारों के वश है, तो हमारी उनके प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामना ही रहे, कोई दुर्भाव किसी के प्रति हमारे मन में ना उत्पन्न हो जाए कि इसने ऐसा क्यों कहा। तो जो ये पिक्चर बताया ना, फर्स्ट उसकी स्टेज थी कि किसी ने एक तीर लगाया और घायल, पर अभी वही इतनी शक्तिशाली हो गया है वो हिरन कि बहुत सारे तीर है, बट इट इज स्टिल स्टैंडिंग लाइक दिस। तो दिस इज नोन एज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता, कि जिसमें स्टार्ट नो, इट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, सब कुछ करते हो, ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा कि यू विल गेट टाइम एंड यू विल बी डूइंग इट, नेवर, यू हैव टू डू इट नाउ एंड हियर, बाकी आती रहेगी, परंतु दे शुड नॉट इंटरफियर इन अवर, वाई, क्योंकि इसके लिए कहा, ये पढ़ाई बहुत आवश्यक है, इस पढ़ाई में इतना अटेंशन चाहिए। 18 जनवरी की मुरली सबने सुनी है, क्या कहा बाबा ने, पढ़ाई में अटेंशन, पढ़ाई में रुचि, हॉबी, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, देर आर थ्री वर्ड्स इन दैट मुरली, हॉबी, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। हॉबी के लिए बाबा ने कहा शौक, रुचि और अटेंशन, पढ़ाई में चाहिए, इस पढ़ाई को छोड़कर और किसी सब्जेक्ट में अटेंशन ना हो, और किसी बात में बुद्धि बिजी ना हो। नाउ द क्वेश्चन इज, संसार का जो आकर्षण है, वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट, जो भी चीज ट्रांजिएंट होती है, क्षणभंगुर होती है, क्षणिक होती है, ट्रांजिटरी होती है, उसी में आकर्षण होता है। व्हाई द वर्ल्ड इज सो अट्रैक्टिव, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। एक्चुअली हम कहते हैं ट्रांजिटरी है करके भूल जाओ, क्षणभंगुर है, परंतु द वेरी रीजन फॉर इट्स अट्रैक्टिवनेस इज इट्स ट्रांजिटरीनेस, उसमें इतना आकर्षण का कारण ही उसकी क्षणभंगुरता है। संसार में जो क्षणिक है उसी का आकर्षण ज्यादा है, जैसे कोई कुरूप है, कुरूप का कोई आकर्षण नहीं है, सुंदर का आकर्षण बहुत है, क्योंकि वो सुंदर हमेशा सुंदर नहीं रहने वाला है। जो फूल एकदम खिला हुआ है वो अभी सुंदर लग रहा है, पर कुछ समय के बाद में वो नहीं रहेगा, परंतु जो पत्थर है वो पत्थर ही रहता है, उसका आकर्षण नहीं है। तो दिस इज एन आयरनी ऑफ द सिचुएशन, कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि संसार क्षणभंगुर है, ट्रांजिटरी है, इसके लिए सीक द परमानेंट, बट द वेरी रीजन फॉर अट्रैक्टिवनेस ऑफ द वर्ल्ड इज इट्स ट्रांजिटरी नेचर। तो ये संसार ऐसा हमको खींचते रहता है। नाउ योर क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, कि इतना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना हम एफर्ट्स कर रहे हैं, परंतु उस संसार का आकर्षण बहुत ज्यादा है। ये कोई केवल वहां रहने वालों की बात नहीं है, सबकी बात है, चाहे यहां रहो चाहे वहां रहो, उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई यहां रहकर भी संसार में रह सकता है, कोई वहां रहकर भी यहां रह सकता है। जहां हम रहते हैं वहां पर हम सृष्टि वहीं पर तैयार करते हैं। द थिंग इज कि वी विल हैव टू कम टू अ रियलाइजेशन एक अनुभव कि हमने इस ज्ञान को समझा नहीं है. एक्चुअली दिस इज अ डायरेक्ट ब्लो टू अवर आई. हमारा जो मैं है उसको ये सीधा आघात है कि हमने इस ज्ञान को अभी तक पूरा समझा नहीं है. हमने वो सारे अनुभव अब तक कुछ भी नहीं किए है. फर्स्ट कम टू दिस रियलाइजेशन कि वी आर नोवेयर एंड देन द न्यू एफर्ट्स विल स्टार्ट. हम अगर ये सोचते रहे कि हमने बहुत पुरुषार्थ कर लिया, हमने बहुत आगे निकल गए, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, एक यह अनुभव कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो इससे एक थोड़ा सा ये आएगा कि अभी कुछ करना है. हमने जो अनुभव किए वो कुछ भी नहीं है. हमने हमारे पास जो ज्ञान है बहुत कम है. ज्ञान तो विशाल है, बाबा ने दे चुके हैं, परंतु क्या हमने एक एक पॉइंट का, एक एक शक्ति का, एक एक गुणों का, आज की मुरली में फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग, एक एक गुण और एक एक शक्ति को सामने रखो और चेक करो कि इसके स्वरूप बने हैं. ज्ञान तो है. बाबा ने एक मुरली में यह भी कहा है, बाप दादा पॉइंट्स क्या सुनाएगा, बाप दादा से भी ज्यादा पॉइंट्स तुम लोगों के पास है, अब पॉइंट बनो. 87 की एक मुरली है जिसमें बाबा कह रहे हैं बाप दादा क्या पॉइंट सुनाएंगे, अब बाप दादा से भी ज्यादा पॉइंट्स तुम लोगों के पास है. नहीं, ये वाली पॉइंट दूसरी है. तो पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, एफर्ट्स आर वी आर डूइंग, परंतु वो संसार का आकर्षण इसलिए है कि अब तक वह वैराग उत्पन्न नहीं हुआ है संसार के प्रति. अब तक बहुत राग है, अब तक बहुत आकर्षण है, जैसे कि उसको हमने दबा के रखा था, वो गया नहीं है, इट इज स्टिल देयर. हाँ, तो उपराम हो जाओ. और नहीं बनेगा. तो यहां पर जो बात है वो है सेल्फ चेकिंग की. कम टू द रियलाइजेशन की सबसे पहले इतनी सूक्ष्म ये चेकिंग है. ऊपर ऊपर से अगर दिख रहा है सब कुछ ठीक है, मतलब उधर भी अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली क्लास जा रहे हैं, सब कुछ सेवाएं भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, परंतु एक इंटरनल पुरुषार्थ जो है दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट डोमेन, कि जिसका जिसमें ये चेकिंग आवश्यक है कि एक एक गुण का, एक एक शक्ति का, एक एक प्राप्ति का कितना अनुभव अंदर हो रहा है, या फिर अशरीरीपन का कितना अनुभव हो रहा है, चाहे कितने किसने कितनी भी सेवा की हो, परंतु मेन थिंग इज हाउ मच इज द एक्सपीरियंस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस. कितना समय हम उस सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में रहते हैं. अगर ये सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज लंबा समय नहीं है तो एक तरफ ये संसार है, एक तरफ हम है, ये आकर्षण करता ही रहेगा, क्योंकि हमने जन्म जन्म इसी संसार में बिताए हैं. द क्वेश्चन आंसर इज वी नीड टू डू इंटेंस सेल्फ चेकिंग फर्स्ट, देन कम टू द रियलाइजेशन दैट वी हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग मच एट प्रेजेंट एंड नाउ आई हैव टू बिगिन माई जर्नी नाउ अन्यू, एवरीथिंग न्यू. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम टूडे. नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स वी आर हियर, नो मैटर वॉट एवर वी हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ, पर आज से नए सिरे से सब कुछ मुझे चालू करना है. नाउ टेक दिस एज अ पॉइंट कि अभी हम मधुबन में आए हैं, तो यहां से जैसे कि एक नया कुछ चालू करके जाना है. क्या नया? मेक अ प्लानिंग ऑफ दैट, एंड दैट प्लानिंग विल बी वेरी वेरी सीक्रेट सेल्फ. और वो एक ऐसी प्लानिंग हो कि इट शुड बी प्रैक्टिकल प्लानिंग, वेरी वेरी प्रैक्टिकल. कि ऐसी प्लानिंग ना हो कि हम 2 बजे उठेंगे तो हियर यू विल गेट अप बट देयर इट विल गो अवे. इट शुड बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल प्लानिंग. कार्य क्षेत्र देखो, अपने दिनचर्या को रिव्यू करो. सबसे पहले आज बाबा ने कहा बुद्धि की डायरी बनाओ, बिजी रहो. दिनचर्या दिस टू दिस टाइम दिस आई डू, उसके बाद में मैं ये करता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर घर में रहता हूँ, फिर सेंटर जाता हूँ. ये पूरी जो दिनचर्या है, इस कंप्लीट दिनचर्या में कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, फर्स्ट फाइंड आउट दैट. लीकेजेस कहाँ कहाँ है, छोटे 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 छोटे, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है. एक दूसरा, टाइम को हम सफल कैसे करें, चुरा लो समय को, स्टील टाइम. जो भी हमें समय मिल रहा है उसको चुरा ले और उसको यूटिलाइज इट फॉर ज्ञान एंड योग. जहां जहां समय हमारा वेस्ट हो रहा है व्यर्थ बातों की चर्चा में, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और ये सारे जो है आजकल जो है ना, जैसे युग इलेक्ट्रॉनिक है, माया भी इलेक्ट्रॉनिक है. दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल माया नाउ, एक्सट्रीमली न्यू फॉर्म ऑफ माया, डिजिटल, एवरीथिंग डिजिटल. तो ओल्ड कस्टमर तो है ही, पर ये सब भी माया ने अपना रूप बदला है, डिजिटल माया है अभी। तो वेर एवर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड, पहले तो उसको, और वहां क्या करना है जाके, उसकी प्लानिंग यहां करो, बाबा के कमरे में बैठकर ये प्लानिंग करो कि वहां जाकर मुझे क्या करना है, कैसी वहां की दिनचर्या सेटिंग अभी से चालू करो, यहां पे बैठ के प्लानिंग करो ये करना है, करियर प्लानिंग भी है, यहां बैठ के करो ये करना है, वहां जाकर क्या करना है। हाँ, ये तो बड़ा कार्य है पर स्थान बनाना, पर यहां आई एम टॉकिंग अबाउट प्लानिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विधि, मेथडोलॉजी। शायद हमारी मेथड कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रही है, डीप रियलाइजेशन ऑफ दिस। एक 87 की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कि बहुत अच्छा बॉम्ब तैयार करते हैं, पावरफुल बॉम्ब तैयार करते हैं, परंतु अगर उसकी विधि नहीं आती है तो कहीं के कहीं गिर जाता है और वेस्ट हो जाता है। इसके लिए हमने देखो अभी ज्ञान की पॉइंट है, बहुत अच्छी मनन चिंतन किया, अभी मनन चिंतन के बाद अचानक परिस्थिति आ गई, बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाइड देयर, कनेक्टेड देयर, तो फेल हो गए फिर से। तो व्हाट टू डू, तो बाबा ने इसमें कहा है कि जो भी मनन चिंतन कर जो पॉइंट भी निकालते हो ना, उस पॉइंट को फिर प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए इसकी प्लानिंग करो। तो यहां मधुबन में अगर आए हैं तो यहां बैठकर इसकी प्लानिंग करो कि वहां जाकर क्या करना है, एक वहां जाकर वहां की दिनचर्या कैसी हो उसकी प्लानिंग यहां, वहां जाकर क्या सेवा करनी है उसकी प्लानिंग यहां करो, वहां जाकर स्थिति को अव्यक्त कैसे बनाए उसकी प्लानिंग यहां करो, वहां जाकर कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कितना समय पढ़ाई को देना है उसकी प्लानिंग यहां बनाओ, वहां जाकर योग कैसा करना है उसकी प्लानिंग यहां बनाओ। और यहां पर प्लानिंग बनाने के बाद एक बार वहां चले गए और एवरीडे कम बैक टू मधुबन थ्रू मेंटली कम हियर एवरीडे, मेक इट अ पॉइंट वंस यू आर देयर कि हम बाबा के कुटिया में गए, कमरे में गए, हिस्ट्री हॉल में गए, ये चार धाम जो है ना इसकी परिक्रमा, वहां जाकर रोज इधर आना है अमृत वेले और शाम को, और जो अनुभव यहां हो रहा है ये सोच के करना है कि वहां जाकर भी यही अनुभव को कायम रखेंगे, एंड कीप ऑन चेकिंग 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 चेकिंग, इट इज जस्ट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, देयर इज नथिंग लाइक कि एक चीज कह दी है एंड यू गॉट द आंसर, इट इज नॉट लाइक दैट, ऑल आंसर एक्चुअली इधर ही है, कोई व्यक्ति कोई क्लास कहीं से आंसर मिलने वाला नहीं है, आंसर किधर है, सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन में आंसर है, केवल हमको परसिस्ट करना है, ढूंढना है उसे, तो वो एक दिन हमारे सामने आ जाएगा। सो दिस इज आई विल एंड इट हियर।